परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई तीतुस के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से तीतुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज इस पत्री का हमारे लिए अंतिम अध्ययन होगा। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि पौलुस हमें बताता है कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा से हुआ है और इसके साथ साथ वह हमें बताता है कि एक विश्वासी और मसीही को किस प्रकार का जीवन जीना है और ये सारी बातें वह तीतुस से कहता है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कलीसिया के भले काम। आइए इससे पहले कि हम आगे जाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से तीतुस की पत्री से अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के सताव और दबाव में हैं, पीड़ाओं में हैं। आप उनकी भी सहायता करें, अपनी दया उनके जीवन में उंडेलें। आज किस अध्ययन पर अपनी आशीष दें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम तीतुस की पत्री उसके तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसका विषय है कलीसिया भले काम करे। जी हाँ, यह पत्र हमें परिपूर्ण परिदृश्य प्रदान करता है कि परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है। हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि परमेश्वर कलीसिया को सुव्यवस्थित देखना चाहता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि कलीसिया की शिक्षाएं खरी होना है और अब हम देखेंगे कि यदि कलीसिया को सिद्ध होना है तो उसे अच्छे अच्छे काम भी करना है। तो आइए देखें, अच्छे काम उद्धार का प्रमाण है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। यहां सबसे पहली बात जो वह कहता है कि कलीसिया के सदस्य नियम पालक हों। विश्वासी को देश का कानून मानना है जब तक कि वे उसके कर्तव्यों और परमेश्वर के साथ उसके संबंधों में बाधक न हो। मुझे अपनी सभाओं में बड़ी लज्जा आती थी जब मुझे घोषणा करना होता है कि किसी की कार गलत जगह पर लगाई गई है या किसी के घर के रास्ते में खड़ी की गई है जिससे उन्हें बाहर जाने में असुविधा हो रही है। यह नियम तोड़ना है और उन्होंने हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहने के इस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे प्रियो, अब एक प्रश्न उठता है, यदि देश के नियम उसके कर्तव्यों और परमेश्वर के साथ संबंधों में बाधक हो तो वह क्या करे? क्या एक सैनिक अपनी मसीही श्रद्धा के विरुद्ध युद्ध पर जाए? मेरे मित्रों, कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि यदि सैनिक का विवेक युद्ध के विरुद्ध गवाही दे तो वह युद्ध करने की अपेक्षा अन्य सैन्य उत्तरदायित्व को पूरा करे। मेरे विचार में ऐसे स्पष्टवादी सैनिक को सराहना चाहिए और उसे समझना और सहानुभूति का पात्र बनाना चाहिए। कुछ सैनिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार से सब लाभ प्राप्त किए परंतु अपना उत्तरदायित्व निभाने से वे पीछे हटे। यह नियम तोड़ना है और उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए। मेरे मित्रों, हमें अपने हाकिमों और अधिकारियों के अधीन होना है। कलीसिया के संदेशों में यह भी होना है कि विश्वासी अधिकारियों के अधीन रहे। यह अधीनता मनुष्य के नहीं उसके पद की अधीनता है। आप शायद पुलिसकर्मी के व्यवहार से रुष्ट हों, परंतु आपको उसकी वर्दी का मान रखना चाहिए। वह उस सामाजिक वर्ग से है जो हमारी और हमारी संपत्ति की रक्षा करता है। उनके बिना हमारी दशा खराब हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस पद से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या विश्वासी राजनीति में उतरे? मेरे विचार में एक विश्वासी राजनीति में जाना चाहे तो वह स्वतंत्र है, परंतु कलीसिया को राजनीति में प्रवेश करना अनुचित है। यदि हम में पवित्र आत्मा काम करेगा तो हमारी कलीसिया से अनेक विश्वासी सरकारी पदों पर पहुंचेंगे। जैसा कि हमने सुना है, इंग्लैंड में वेस्ली ने न तो राजा को और न ही कलीसिया में सुधार लाना चाहा था। उसने केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों में बदलाव आया। शराबियों और जुआरियों ने, जो गरीबों के प्रति उदासीन थे, वेस्ली के प्रचार के परिणाम स्वरूप अपना जीवन प्रभु यीशु को देकर मजदूर उत्थान अभियान आरंभ किया, जिसमें बाल श्रम का विरोध और कार्य क्षेत्र में मजदूरी की रक्षा के मुद्दे थे। अतः हमें सरकार में विश्वासियों की आवश्यकता है, परंतु कलीसिया को राजनीति में प्रवेश करने की बुलाहट नहीं है। हमने पढ़ा कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। कलीसिया के लिए आवश्यक है कि वह सदस्यों को सिखाए कि वे भले काम करने के लिए उत्साही हों, जिज्ञासु हों और भले काम करना सीखें। मेरे मित्रों, हमारे अध्ययन में आगे चल करके हम यह देखेंगे। इस आदेश का नकारात्मक पक्ष भी है, तो आइए हम पढ़ें तीतुस 3 उसके 2 पद में, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। लिखा है किसी को बदनाम ना करें, किसी के विरुद्ध झूठी बातें ना करें। कहा जाता है कि आप हर एक बात पर विश्वास तो नहीं कर सकते, परंतु उसे दोहरा सकते हैं। पौलुस इसी संदर्भ में कह रहा है कि हम सुनी हुई बुराई को ना दोहराएं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिना प्रमाण के एक से दूसरे तक पहुंच जाती हैं। एक और कहावत है, कुछ लोग कानाफूसी पर विश्वास कर लेते हैं, यदि कान में कही जाए तो वे सुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे नहीं चाहते हैं लोग उसी को सुन लेते हैं, परंतु यदि कलीसिया के पास ठोस प्रमाण है तो दोषी व्यक्ति को प्रकट किया जाए। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम प्रकट किया है, देमास जिसने संसार को प्रिय जानकर उसका साथ छोड़ दिया था, सिकंदर ठठेरा, फोगेलुस, हिर्मोगिनीज, हुमेनियस, फिलेतुस आदि। ये सब वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का संगति छोड़ दिया था। तीतुस 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से वैर रखते थे। मेरे प्रियो, यह उद्धार से रहित मनुष्य का चित्रण है। मसीह यीशु को ग्रहण करने के पूर्व आपका और मेरा चित्रण है। हम निर्बुद्धि थे, अनाज्ञाकारी थे, धोखे में थे, लालसाओं और भोग विलास में पड़े हुए थे, उसके दास थे। हम स्वार्थी जीवन जी रहे थे और एक दूसरे से घृणा करते थे। जी हाँ, यह खोए हुए संसार का चित्रण है। आप किसी भी कार्यालय या कंपनी में चले जाएं, वहां आप ऐसा ही वातावरण देखेंगे और दुर्भाग्य से कुछ कलीसियाओं में भी यही देखने को मिलता है। प्रेम केवल ऊपरी दिखावा है, मन में ईर्ष्या है, घृणा है और पीठ पीछे बुराइयां हैं। कलीसियाओं में गुटबंदी है, परंतु वे विश्वास में दृढ़ होने का दावा करते हैं। यह मसीह के प्रयोजन का अपमान है। यह अविश्वासियों का चित्रण है। आपका और मेरा चित्रण ऐसा ना हो। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। पद 3 में प्रभु को ग्रहण करने से पूर्व का हमारा चित्रण है। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि विश्वासी होने का अर्थ एक नया अध्याय आरंभ करना नहीं है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में भी वही पुरानी बातें हैं। नव वर्ष के नए संकल्प और अधिक अच्छा करने की प्रतिज्ञा आपको विश्वासी नहीं बनाते हैं, न ही आप अच्छे कामों और धार्मिक कृत्यों के द्वारा उद्धार पाते हैं। अपनी दया के अनुसार हमारा उद्धार उसने किया है, क्योंकि मसीह हमारे लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और हमारे पापों का दंड चुकाया। उसने कीमत चुकाई, इसलिए परमेश्वर हम पर दया बरसाने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है कि उसके पास दया का विशाल भंडार है। उसकी दया के कारण ही हमें उसने बचाया है। मेरे प्रियो, आप जो भी हैं, वह आज आपका उद्धार करने के लिए तैयार है, क्योंकि मसीह आपके लिए मरा था। जी हाँ, आपके पापों के लिए ही वह मरा था। उसने दंड चुकाया है और आपको धर्मी ठहराया है। नए जन्म के स्थान के द्वारा हुआ स्नान अर्थात धोना या नए जन्म का धोना। पुराने नियम में मिलाप के तंबू में एक हौद था और फिर मंदिर में रखा गया, वह इसी बात का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में प्रभु यीशु यही कह रहा था। यूहन्ना 3:5 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। बाइबल आपको धोती है, उसमें शोधन शक्ति है। हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध किए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है। लिखा है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। तीतुस की पत्री 3:6 में लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। मेरे मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर जो भी करता है बहुतायत से करता है। वह हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक करने में सक्षम है। तीतुस 3:7 में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन की आशा कलिसिया के लिए प्रभु यीशु के आने की विश्वासी की महान आशा है। भले काम आज वरन भविष्य के लिए लाभकारी है। तीतुस 3:8 में लिखा है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। मेरे प्रियो, यह सत्य कि विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाता है, उसे भले काम करने से छूट नहीं मिल गई है, वरन सच तो यह है कि उसे भले कामों में लगे रहने का ध्यान है, अर्थात उसे ध्यान रखना है। पौलुस कहता है कि तीतुस इस बात की पुष्टि करता रहे। मेरे प्रियो, आपके उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपसे भले काम करने के लिए कहता है। उद्धार पाने तक परमेश्वर आपके भले कामों पर ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि जिसे आप भले काम कहते हैं उसे परमेश्वर मैले चित्रों के समान देखता है। यशाया की पुस्तक 64:6 में वह कहता है कि मनुष्य के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े हैं। परमेश्वर को मैले चिथड़े नहीं चाहिए, वह तो आपका उद्धार करना चाहता है। यदि आप उसके पास जैसे हैं वैसे ही आ जाएं, तो वह आपका उद्धार करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ किया है। वह आपसे कुछ करने के लिए नहीं कहता है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? उद्धार पाने के बाद आप जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब वह आपसे भले काम करने के लिए कहता है। वह कहता है कि आप परमेश्वर का वचन अन्य लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी अंधेरे में हैं, उस सच्चाई को नहीं जानते हैं। इसीलिए कहता है कि भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। इन बातों पर आप विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। परमेश्वर के लिए भले काम करने के लिए आप चिंता करें। जी हाँ, जब आप वचन को समझ जाएंगे और अपने मन में इन बातों को आने देंगे, तो आप स्वयं ही परमेश्वर के लिए भले काम करेंगे। तीतुस 3:9 में लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। हमें विश्वास की रक्षा करना है, परंतु पौलुस कहता है कि वह वाद विवाद करके नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है। वाद विवाद से कोई प्रभु के पास नहीं आया है। आप विवाद करके किसी को हरा नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि आप हरा सकते हैं, परंतु इससे उसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए कहता है कि मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और झगड़ों से बचे रहें। आज यही कारण है कि कई बार लोग मसीह यीशु के बारे में बहुत सारी बातों को कहते हैं, यहां तक कि समाचार पत्रों के माध्यम से और यहां तक कि दूरदर्शन के माध्यम से बुराइयां करते हैं, परंतु मसीह के लोग चुपचाप रहते हैं, क्योंकि यह काम परमेश्वर का है और वही उसका न्याय उन्हें देता है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं भी विवादास्पद विषयों को नहीं उठाता। आज भूत सिद्धि चर्चा का विषय है, तंत्र मंत्र चर्चा का विषय है। मुझे पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है, दुष्ट आत्माओं पर भी तो अध्ययन करवाएं। मैं आपको इसकी अपेक्षा पवित्र आत्मा के बारे में अधिक बताऊंगा, जो आप में अंतर्वास करता है और करेगा। यदि वह आप में अंतर्वासी है, तो दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आएगा। पहला योहन्ना की पत्री 4:4 में स्पष्ट लिखा है, जो तुम में है वह उसमें, जो संसार में है उससे बड़ा है। मेरे प्रियो, हमें यही जानना है, भटक जाना तो बहुत आसान है, परंतु उसमें बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तीतुस 3:10 में लिखा हुआ है, किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग रह। हमसे अनुरोध किया गया है कि हम किसी किसी परियोजना में सहयोग दें। इन परियोजनाओं में झूठे शिक्षक हैं। मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में किसी भी दृष्टिकोण का सहभागी नहीं होना चाहता हूं। परमेश्वर यहां स्पष्ट कहता है, पाखंडी से अलग रह, अर्थात उनका परित्याग करें। तीतुस 3:11 में लिखा हुआ है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है, वह है जो सत्य से अलग हो गया है। तीतुस की पत्री 3:12-14 में लिखा हुआ है, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल न रहें। भले कामों के विषय यह पौलुस का अंतिम वचन है। मेरे मित्रों, हमें भले काम करने सीखना है। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना है। अनेक जन सोचते हैं कि यह आसान काम है, परंतु हमें जानना होगा कि परमेश्वर की दृष्टि में भले काम क्या है, और हमें सीखना भी होगा कि उन्हें कैसे करें। पौलुस आशीर्वाद के साथ अपना यह पत्र समाप्त करता है, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको भी नमस्कार। मेरे मित्रों, वह कहता है कि तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तीतुस की पत्री 3:15 में हम पढ़ते हैं, मेरे सब साथियों को तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और इसी के साथ तीतुस की पत्री का भी समापन होता है। अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मित्रों को भी अगले अध्ययन में अवश्य ही शामिल करें, ताकि हम फिर से परमेश्वर के वचन की सत्यता को सीख सकें, समझ सकें, और अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और परिवार एवं कलीसिया में आशीष के कारण बने। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। कर तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं। तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। यादों में तेरे हर पल रहूं, तेरे वचन में निभाता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं मरूं, तेरे कदम पर हरदम चलूं। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। कर तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं। तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। यादों में तेरे हर पल रहूं, तेरे वचन में निभाता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं मरूं, तेरे कदम पर हरदम चलूं।